बिस्मिल्लाह कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोगो कलम सफा नंबर 15 से 17 की रिकॉर्डिंग के बाद ये सवाल जो है ये ज़हन में आए, ये आपसे गुजारिश है कि इनके जवाब जो है ये क्लियर कर दें। सवाल नंबर 1 है, रोया कासबा और सादका से क्या मुराद?
माशाल्लाह माशाल्लाह। रोया कहते हैं ख्वाब को, ठीक है, जब हम ख्वाब के हवास में चले जाते हैं तो जो कुछ हम देखते हैं या हमें दिखता है या जो दिखाया जाता है, ये तीन चीजें हैं, जो हम देखते हैं, जो दिखता है और जो हमें दिखाया जाता है। अब उस देखने को हम रोया कहते हैं, या हवास की इस रफ्तार के इस्तेमाल को रोया कहते हैं, ये सलाहियत है। अब ये रोया काजिबा और रोया सादिका से क्या मुराद है? इसका आम मफहूम ये लिया जाता है कि सच्चे ख्वाब और झूठे ख्वाब। लेकिन ख्वाब जो देख रहा है बंदा, अगर अपनी मर्जी से अपने बने हुए जहन के साथ इत्तला को वसूल कर रहा है या उसे शैतानी तर्जों में वसूल कर रहा है तो उसे रोया काजिबा कहते हैं, क्योंकि वो हकीकत को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। अब इसी तरह जो रोया सादिका हैं, यानी कि जब आप किसी इत्तला को वैसे वसूल करते हैं जैसे आपको दिखाई जा रही है और आप उसे वैसे ही देखते हैं, उसमें अपने आपके जहन की जो तर्जे हैं वो उसको बदलती नहीं है, उसको रोया सादिका कहते हैं। अब इसको फर्क को समझें, होता ये कि तलाक दोनों जगह एक सी काम कर रही हैं, ख्वाब में भी और बेदारी में भी। बेदारी में वो जमानों मकान की तरतीब के साथ अमल पैरा होते हैं हम उन पे, और ख्वाब में जमान व मकान की तरतीब के बगैर हम उनको देखते हैं या वो हमें दिखती हैं या हमें दिखाई जा रही होती हैं। जो चीज़ जैसे दिखाई जा रही हो उसको वैसे देखना, ये रोया सादिका कहलाता है। ये है इसका असल मफहूम। हमारे यहाँ इसका मफहूम लिया जाता है कि सच्चे ख्वाब नजर आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बंदे का जहन इतना पर्ज हो जाता है कि वो इत्तलात को बेदारी में और ख्वाब में एक तरह वसूल करता है। लिहाजा ख्वाब में जो कुछ वो देखता है या दिखता है वो बेदारी में भी उस पर वैसे ही अमल करता है या उस पर अमल होते देखता है। तो लिहाजा हम क्या कहते हैं कि जी जो मैंने ख्वाब देखा वो सच्चा साबित हो गया, इसलिए इसको रोया सादिका कहते हैं। और ये जहन की वो आला सलाहियत है, रोया वो सलाहियत है जिसको हम शऊर से ऊपर उठकर हवास की उन रफ्तारों के साथ काम लेते हुए बरतते हैं जिससे हम बेदारी में बेशऊर रहते हैं, इसीलिए इसको लाशऊर कहते हैं। यानी ऐसी चीजें जिनका बेदारी में हमें शऊर हासिल नहीं होता। तो ये बात वाज़े हो गई कि रोया सादिक असल में क्या है?
सही, इत्तला को वैसे ही वसूल करना, डिस्टॉर्ट ना करना।
बिल्कुल दुरुस्त कहा, इत्तला को खालस वसूल करना, इत्तला को खालस वसूल करना। हजूर कलंदर बाबा औलिया के पास एक साहब आए, कहने लगे मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे कहा जा रहा है कि आप सफेद वर्दी पहन लें। तो हजूर कलंदर बाबा औलिया ने उसकी तादीर में ये इरशाद फरमाया कि असल में आपसे कहा जा रहा है कि आप सिलसिला सोहर वर्दिया में दाखिल हो जाएं। अब आप गौर करें, इत्तला क्या दी जा रही है, उसका लाशऊर या उसकी रूह या उसकी ज़ात, उसको क्या इत्तला दे रही है कि आप सिलसिला सोहर वर्दिया में दाखिल हो जाएं, और वो क्या सुन रहे हैं कि आप सफेद वर्दी पहन लें। अब उनके बने हुए जहन में ये था कि मुझे अल्लाह रब्बे करीम कोई सरकारी मुलाजमत हासिल करने का कह रहे हैं। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने बताया कि नहीं, अभी तो आपकी तरबियत की जरूरत है। और आपको जो तरबियत बेहतर तौर पे मिल सकती है वो सिलसिला सोहर वर्दिया में मिल सकती है। अब उस बंदे का जहन देखें, उसने सिलसिला सोहर वर्दिया या सोहर वर्दिया में दाखिल हो जाएं, तो उन्होंने उसको क्या सुना कि सफेद वर्दी पहन लें। तो ये क्या हुई, ये रोया सादिका और रोया काजिबा के बैन बैन की बात है। बात तो उन्होंने सही से देखी, लेकिन वो उनके जहन ने उसका मफहूम उनकी तर्जों के मुताबिक बना दिया। जब हजूर कलंदर बाबा औलिया ने देखा तो वो बंदा चूंकि बहुत ही आगे का बंदा है, हजूर कलंदर बाबा औलिया हजूर अलैहिस्सलाम से बराह रास्त अलूम सीखे हुए बंदे हैं, तो क्या हुआ उन्होंने उसका असल मतलब समझ भी लिया, जान भी लिया और उसे बता भी दिया कि भाई तला तो ये आई थी। अब अगर वो बंदा इस तला को यही देखता कि आप सिलसिला सोर वर्दिया में दाखिल हो जाएं, और वो सिलसिला सोर वर्दिया में दाखिल हो जाता तो क्या होता, वो कहता मुझे रोया है सादिका आया है, ठीक हो गया। जी
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य में वो जब हो गया सब, वो उनके भाई आए वालिद आए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सच कर दिखाया,
आहा
रोया था इसको सच कर दिया।
जी जी, यानी उन्हें बचपन में ये ख्वाब दिखाया गया था ना, ठीक है, कि उनको तसर्रुफ हासिल होगा रूहे हैवानी, रूहे इंसानी और रूहे आजम के दर्जे पे। ख्वाब का जो बचपन में उन्होंने देखा था कि सूरज चांद और सितारे, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, क्या मतलब कि वो उनको ये तसर्रफ हासिल होना था कि रूहे हैवानी रूहे इंसानी और रूहे आजम के दर्जे पे वो तसर्रफ कर सके। तो उसका मादी मुजाहरा ये हुआ कि उन्होंने हुकूमत हासिल की और हालात को अपनी फेवर में इस तरह बदला के माँ बाप को बुला लिया, भाई को बुला लिया, अपने बल के पूरे कबीले को वहां बुला लिया, ठीक हो गया।
सही सही। दूसरा सवाल है,
इरशाद,
सलात कायम करने से क्या मुराद है, और सिफत मुहीद का अक्स इंसान की रूह में पाया जाता है, रूह की बेदारी में सलात का क्या किरदार है,
रूह की बेदारी में सलात का क्या किरदार है। सलात कहते हैं ताल्लुक को, सलात कहते हैं ताल्लुक को। आप देखें ना एक चीज, मसलन अब आपने टीवी बनाया, अब टीवी का ताल्लुक एक तो बिजली से कायम होना चाहिए ताकि बरकी रॉ उसके अंदर की मशीन को चला सके, साथ में उसके अंदर रिसीविंग का जो सिस्टम है वो भी कायम होना चाहिए, यानी उसका ताल्लुक लहरों के उस निज़ाम से होना चाहिए जहाँ से नशरियात आ रही हैं। तो ये ताल्लुक हो गए ना दो किस्म के टीवी के लिए, नहीं तीसरा ताल्लुक ये है कि कोई सामने बैठा हुआ उसे देखने वाला भी तो हो। क्यों जी, कोई उसे ऑन करने वाला होगा, कोई उसे देखने चाहेगा, तभी तो वो टीवी को ऑन करेगा यानी उसे प्लग लगाएगा, फिर उसका एंटीना ठीक करेगा या उसको कनेक्शन देगा नेट के साथ या केबल के साथ, क्यों जी?
सही।
तो ताल्लुक का निजाम, ताल्लुक सलात का मतलब, अकीमुस सलात का मतलब समझ आया इस मिसाल से? एक तो आपको अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब से ताल्लुक रखना है, क्योंकि असल एनर्जी तो वहां से सप्लाई हो रही है। फिर उसके नशरियाती प्रोग्राम से भी ताल्लुक होना चाहिए, यानी जो इत्तलात आ रही हैं आप उनको भी वसूल करेंगे, उसके सिस्टम से भी मुताल्लिक रहेंगे। और फिर सारा सिस्टम बना किसके लिए? जिस मकसद के लिए बना, उस मकसद को सामने रखकर आप काम करेंगे, यह है सलात। सलात का मैंने क्या अर्ज किया? हमारे यहां इसको पढ़ना बना दिया। देखें ना, मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप अपने माली से कहें कि ये फूल गमलों में लगा दो, अब वो सारा दिन आपके इस जुमले की तिलावत करे, इसका विर्द करे, इसकी तजवीद करे, इसकी किरत करे और करता रहे, खाते हुए भी कर रहा है, सोते हुए भी कर रहा है, जागते हुए भी कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा तो ये कि गमले में फूल नहीं लगा रहा। ईमानदारी से बताएं आप उसको कितने नंबर देंगे?
कोई नंबर नहीं मिलेगा, काम तो हुआ नहीं।
शाबाश। तो सलात का मैंने जो मिसाल दी, इसको जरा जहन नशीन होने दें। नंबर एक, आपको अपनी एनर्जी से ताल्लुक रखना है ताकि आप फंक्शन कर सकें। क्या फंक्शन? कि तलात वसूल कर सकें। तीसरा फंक्शन, कि आप उसे डिस्प्ले कर सकें। ये एक मैंने मादी जोन में एक टीवी की मिसाल दी, कानून वही है अल्लाह का। और आपके अंदर ये तीनों स्विच लगे हुए हैं, कौन से? एनर्जी वाला भी, इत्तलात की वसूली वाला भी, और इत्तलात को डिसेमिनेट करने वाला भी। हमारे चेहरों पे सिवाय फटकार के क्या बरस रहा होता है? हम अंदर से कुड़ रहे होते हैं, लिहाजा कड़वाहट और बेजारी और कोफ्त जो है हमारे चेहरे की स्क्रीन पे नशर हो रही है। अल्लाह हमें खुशियों की इत्तला दे रहा है, हम खुशियों की इत्तला वसूल करके अपने चेहरे से खुशी और सुकून की लहरें रेडिएट करने के बजाय परेशानी की कर रहे हैं। छोटे बच्चे को देखें क्या करता है, हर बच्चा कोई भी हो, हम उसे देख के खुश होते हैं या नहीं होते? क्यों? अब बच्चा किसी का भी हो, किसी की गोद में हो, आप उसे देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या है? वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा मासूमियत के साथ अंदर से उठने वाली खुशी, तमानियत और सुकून की लहरें नशर कर रहा है। आप कहते हैं बचपन में कोई गम नहीं था, तो अब क्यों है? आपने गमों को क्या कहते हैं, जफा डाला हुआ है। तो नतीजा क्या हुआ? सलात का असल मफहूम जो लिया जाता है वो बहुत ही सतही है। थोड़ा गहराई में जाएं तो हम कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक। जाहिर है अल्लाह से ताल्लुक के बाद आपको उस नशरियाती सिस्टम से भी ताल्लुक कायम करना है, फिर आगे उसको डिसेमिनेट करने के लिए भी आपको ताल्लुक चाहिए। मिसाल मैंने दो दे दी, एक टीवी की और एक छोटे बच्चे की। एक साल का बच्चा आपने गोद में उठाया हो तो आप सड़क पे जा रहे हो ना, तो वैसे ही लोग गुजरते हुए उसके गाल की चुटकी लेना चाहते हैं, हाँ या नहीं? उसको टच करना चाहते हैं, उसे फील करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? क्यों? मुझे और आपको देख के लोगों में क्यों बेजारी आ जाती है? इसलिए कि अंदर से हमारा सारा सिस्टम जुपरडाइज्ड है। क्या लफ्ज बोला? जुपरडाइज, सब तबाही मची हुई अंदर। क्यों? कि अल्लाह से ताल्लुक, यानी अब टीवी का स्विच ही नहीं लगा हुआ, उसका केबल काम नहीं कर रहा या एंटीना ही काम नहीं कर रहा, एंटीना वाली तार, सॉरी, ठीक है, एंटीना भी मौजूद है, उसके अंदर तारें भी मौजूद है, काम नहीं कर रही। फिर आगे वो डिस्प्ले ठीक नहीं कर रहा। ये तीन एंगल है सलात के। اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اللہ رب کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یعنی کہ تعلق کے یہ تینوں زاویے جو ہیں آپ کے قائم رہنے چاہیے. غور کر کے دیکھیں، اب صلات کا مفہوم دیکھیں کتنا اعلیٰ مفہوم ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جس طرف لگا دیا وہ اس لیے کہ آپ کو ایک ڈرل کروائی جاتی رہے کہ شاید آپ کا دھیان اس طرف آ جائے. ٹھیک ہو گیا، بات واضح ہو گئی؟
جی بالکل.
چلیے نیکسٹ
سوال. نمبر سوال نمبر تین ہے، رویہ کی صلاحیتوں کے مدارج، لطائف، انہی کو لطائف اور ستت الایام، یہ کیا ایک ہی چیز ہے؟
جی ہاں، ایک ہی چیز ہے. لطائف ہوں، اصل میں ستت ایام کہہ کے اللہ رب کریم نے ایک بات بتائی کہ یہ چھ بناوٹیں ہیں. کیا ہیں؟ سارا نظام اللہ نے، انسان کا سارا نظام چھ بناوٹوں پہ تشکیل دیا ہے. اسی کو چھ مدارج، رویا کی صلاحیتوں کے چھ مدارج کہا گیا ہے. اسی کو رویا کا جو ترجمہ میں نے کیا تھا وہ سلیپ نہیں کیا تھا، ڈریم نہیں کیا تھا، اونیرک. اونیرک کا لفظ جو ہے، اس کو ڈکشنری میں دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ اونیرک جو ہے یہ اصل میں وہ صلاحیت جو آپ کو خواب دکھاتی ہے. آگے اس کے چھ سرکل ہیں، چھ گلوب ہیں، یا چھ بناوٹیں ہیں. اب یہ بناوٹیں اور یہ لطائف اصل میں کیا ہیں؟ یہ ستت ایام اللہ نے کسے کہا ہے؟ حضور قلندر بابا والیا نے. اس کتاب لوح قلم میں آگے آپ پڑھیں گے بڑی وضاحت سے اس کی شرح کی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ جب وہمہ خیال بنتا ہے تو یہ ایک بناوٹ ہوئی، جب خیال تصور بنتا ہے یہ دوسری بناوٹ ہوئی، جب تصور احساس بنتا ہے یہ تیسری بناوٹ ہوئی، اور پھر احساس کا ڈسپلے ہونے کے بعد جب احساس واپس تصورات میں ڈھلتا ہے تو یہ چوتھی بناوٹ ہوئی، جب تصورات واپس خیال میں ڈھلتے ہیں تو یہ پانچویں بناوٹ ہوئی، اور جب یہ خیال واپس وہمہ کے درجے پہ جاتا ہے تو یہ چھٹی بناوٹ ہوئی. یہ ہیں اصل میں چھ بناوٹیں، یا چھ ست، یعنی چھ ست، یعنی ستت ایام، یا ان کو تصوف میں لطائف کہا گیا، لطیفہ. یہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کر دیا گیا، جوکس آف دی پیپل ور کلرڈ ود دی لو آف پروفٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں پہ لطائف، لطیف چیز، وہ لطیف بناوٹ جو مادی زون میں نہیں ہے اس کو لطائف کہا. تو لطائف جو ہیں وہ اصل میں کیا ہیں؟ بناوٹیں ہیں. جب ایک وہمہ خیال میں ڈھل رہا ہے تو بناوٹ ہے نا بھئی. آپ پانی سے برف بناتے ہیں تو یہ ایک بناوٹ ہے یا نہیں؟ اب برف سے دوبارہ پانی بن رہا ہے، یہ بھی ایک بناوٹ ہے. پانی سے گیس بن رہی ہے، مایا بھاپ بن رہی ہے، تو یہ بھی ایک بناوٹ ہے. اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں، یعنی حرارت چاہیے. پانی کو برف بنانے کے لیے بھی لوازمات ہیں، یعنی فریزر چاہیے. پہلے برف کا کارخانہ چاہیے ہوتا تھا. تو یہ جو چھ بناوٹیں ہیں ان کا نام ہے لطائف ستت ایام، یا لطائف ستہ، یا ہمارے ہاں چھ لطائف کر دیا گیا اور وہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کہاں ہیں. اصل میں یہ وہمے کا، وہی چار چیزیں ہیں، وہمہ، خیال، تصور اور احساس، اور انہی کو صوفیاء کرام نے، علماء باطن نے، کیونکہ پہلے یہ علم جو تھا علم سینہ کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، کوڈ ورڈز میں پڑھایا جاتا تھا، इस तरह से खुले खुले नहीं बताया जाता था जिस तरह से हजूर कलंदर बाब औलिया ने इसको वाशगाफ कर दिया, आम कर दिया। ये बेसिक बातें हैं जिनको चूंकि टर्मिनोलॉजी के भंवर में इतने गहरा डबो दिया गया था कि ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। हजूर कलंदर बाब औलिया ने नो जिनों इंस पे ये एहसान फरमाया, और वो खुद से नहीं फरमाया, ये हजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म से फरमाया कि इस बात को वाजे कर दो इन पे। अब शऊर इंसानी इतना तबाना हो चुका है कि वो अब बात को इस तलाहात से हटकर समझ सकता है। जब आप इस किताब के तकरीबन 200 सफ़े पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद हजूर कलंदर बाब औलिया जो हैं वो इस्तलाहात का इस्तेमाल तकरीबन तर्क कर दिया, और आखिरी 50 सफ़ों में तो इस्तलाहात का वजूद ही कोई नहीं है। ये बात भी वाजे हो गई। जी
चौथा सवाल है, रवैया किसे कहते हैं, गैर जानिबदार तर्ज फिक्र से रवैयों पर क्या असर?
माशाल्लाह जी क्या घड़वंत है सवाल की। देखें रवैया बिहेवियर को कहते हैं, ये जो हमारे रवैये होते हैं किसी चीज को वसूल करने के बाद हम क्या रिएक्ट करते हैं, हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चीज़ें रवैया कहलाती हैं। इसी को इस्तलाहन सलूक कहा जाता है। सलूक का मतलब है रवैये, राह सलूक यानी अपने रवैये ठीक करना है। सालक कहते हैं जिसका सलूक ठीक हो जाए। सलूक और रवैया एक ही चीज़ है। देखें ना, आप कहते हैं आपने मेरे साथ क्या रवैया इख्तियार किया हुआ है, या आप ये फरमाएं कि जी आपने मेरे साथ क्या रवैया सलूक किया। हम अक्सर आम जबान में बोलते हैं ना ये लफ्ज, क्यों जी? जब हम आम जबान में रवैये और सलूक का मतलब समझने में कोई गलती नहीं करते, तो जब तसव्वुफ में या रूहानियत में या सिलसिला अज़ीमिया की किताब पढ़ते हुए हमारा जहन पता नहीं इसके क्या कोई मावराई मतलब क्यों लेना चाहता है। भाई मेरे एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, ये रवैया कहलाता है। ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा क्या आपके सवाल का? अब ये लफ्ज गैर जानेबदार को भी आज मेरा ख्याल है इस्त्री कर ही दिया जाए। ये लफ्ज गैर जानेबदार जो है ना, ये बात समझाने के लिए बढ़ता गया। इसका मैंने इसी मुखालते में हजूर मुर्शिद करीम से कहा जी कि ये जुमला तो किसी गैर अजीमी के लिए हो सकता है, अजीमियों के बेचारों के तो जहन जो है वो आपकी तरफ लगे हुए हैं। मैंने अपनी मिसाल दी कि मैं हर बात को आपके रेफरेंस से सोचता हूं, तो मैं तो जानिबदार हुआ। तो ये गैर जानिबदारी का आप मुझे पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? हजूर मुर्शिदे करीम मुस्कुराए, फरमाया हाँ हजूर कलंदर बाब औलिया ने बड़ी गहरी बात फरमाई है। अच्छा, कोई उनके कहने में कोई ऐसी तासीर होती है कि आदमी शांत हो जाता है। अच्छा, मैं शांत हो गया, लेकिन बाद में वो कड़ी में फिर उबाल आना शुरू हो गया कि भाई मुर्शिद ने कहा इसमें गहराई है, क्या गहराई है? मैं उस गहराई की तलाश में गोताजन हो गया। जब मैंने किताब लौह कलम में जिस जगह ये लफ्ज लिखा हुआ है वहां पढ़ा, तो वहां पे लफ्ज है गैर जानिबदार तर्ज फिक्र, यानी अदालत का तर्ज जहन है या नहीं? अब हमने गैर जानिबदार का बाजा तो बजाया, वो हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि गैर जानिबदार हम हो ही नहीं सकते। भाई देखें, मैं मुसलमान हूं तो मैं तो जानिबदार हो गया, आप ईसाई हैं तो आप जानिबदार हो गए क्योंकि आप हजरत ईसा की तरफ झुके हुए हैं, मैं हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ झुका हुआ हूं, कोई हजरत मूसा की तरफ झुका हुआ है। کوئی کسی اور کی طرف جھکا تو غیر جانبدار کہاں سے ہو گئے ہم؟ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، تو غیر جانبدار کا کیا مطلب ہوا؟ اگلا جملہ واضح کر رہا ہے حضور قلندر باب اولیاء کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑتے، کیا کہا؟ عدالت کا طرز ذہن، عدالت کا طرز عمل. اب اس کو سمجھیں، غیر جانبدار کے بجائے آپ اصل بات کو سمجھیں. اصل بات یہ ہے، عدالت کیا کرتی ہے، جج کیا کرتا ہے؟ جج دو فریقین کی دونوں کی بات سنتا ہے، لیکن تولتا قانون پہ. وہ دونوں کی بات سماعت فرما کر یہ بتاتا ہے کہ قانوناً کس کی بات میں زیادہ وزن ہے، قانون کس کی حق میں بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو غیر جانبدار کہا جائے گا، کیونکہ وہ کسی فریق کی جانب نہیں ہے، لیکن وہ جانبدار تو ہے، وہ تو قانون کو دیکھ رہا ہے، تو قانون کے لیے وہ جانبدار ہوا، لیکن اس کی نگاہ کہاں ہے؟ قانون پہ. وہ دیکھتا ہے کہ فریقین یعنی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات سنتا ہے، دونوں کو پورا موقع دیتا ہے کہ اپنی عقل سے وہ ثابت کریں، لیکن فیصلہ قانون کے مطابق کرتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے، اس لیے مدعی کی بات صحیح ہے یا مدعا علیہ کی بات صحیح ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح روحانیت میں سالک کو اپنے رویوں کو اپنے سلوک کو ایسا کرنا ہے کہ وہ ہر بندے کی بات سنے، لیکن ساتھ میں اس کے ذہن میں قانون ہونا چاہیے. کون سا قانون؟ سب سے بڑا قانون قرآن ہے. اب قانون کیا ہے؟ قانون کہتے ہیں بڑے کی مرضی کو. بڑے کی مرضی کیا؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی ہر بات قانون ہے. اللہ کی ہر بات قانون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد عالی مقام ہے کہ آج تک اللہ نے میری کوئی بات رد نہیں کی. تو حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا سلیقہ تھا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی جو اللہ کو ناپسند ہو. غور کریں، یعنی کہ اگر انہیں یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کی کوئی بات رد نہیں کی، تو انہیں بھی تو یہ شرف حاصل ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی بات کی نہیں، یعنی قانون کے مطابق چلتے رہے. اب آپ غور کریں کہ اصل میں کیا مسئلہ ہے. جس ملک میں قانون کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہاں پہ امن ہے، سکون ہے، وہ فلاحی ریاستیں بن گئیں، لیکن جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ زور زبردستی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، مطلب یہ میل ملاپ کے ذریعے یا رشوت دے کر اپنے کام کروانے کا کہاں پہ آیا؟ جہاں قانون نہیں ہے. تو یہ سارا معاشرتی نظام کہاں کے ٹھیک ہو جائے گا جب آپ عدالت کے طرز ذہن سے کام کرنا شروع کر دیں گے؟ بتائیے. جب ایک بندہ عدالت کا طرز ذہن استعمال کرتا ہے، اس کو غیر جانبدار ہونا کہتے ہیں. یہ ہے غیر جانبداری. اب دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ جی ایک دائیں چلیں، ایک بائیں چلیں اور ایک سیدھا چلیں. بائیں والوں کو قرآن نے اصحاب الشمال کہا، دائیں والوں کو اصحاب الیمین کہا، سیدھے والوں کو سابقون کہا. سبق کا مطلب ہم نے سبقت لے جانا کیا، تو جو اللہ کی طرف سبقت لے گئے، یعنی جن کے ذہن میں اللہ طاری ہو گیا، جاری ہو گیا اور اللہ نافذ ہو گیا، اللہ کی بات نافذ ہو گئی، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا، وہ غیر جانبدار ہو گئے. تو نیوٹریلٹی اصل میں کیا چیز ہے؟ نہ نیگیٹیوٹی نہ پازیٹیوٹی، بلکہ نیوٹریلٹی. آپ پازیٹیو کو ایز اے پازیٹیو دیکھیں، یاد رکھیں. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا. जब हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे तो ला महाला नेगेटिविटी साथ बढ़ेगी। जब हम नेगेटिविटी को खत्म करेंगे तो पॉजिटिविटी भी तो खत्म होगी ना, क्योंकि ये दोनों तौम हैं, ट्विन्स हैं, जोड़ा हैं। जब आप इन दोनों से ध्यान हटा लेंगे क्या हो जाएगा, आप न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये न्यूट्रलिटी की बात जो की गई है, न्यूट्रलिटी का मतलब असल में क्या है, कानून। अब जब हम कहते हैं ना मैं पॉजिटिव देखूं ना मैं नेगेटिव देखूं, तो क्या देखूं, कानून। जन्नत में क्या था, आजादी थी, लेकिन एक कानून था, क्या, कि अल्लाह की बात माननी है। ये पाबंदी थी ना। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे जहनों में अल्फाज का मफहूम गलत है। आजादी का मतलब हम मादर पेदर आजादी लेते हैं, वो गलत है। असल में कानून के यानी बड़े की मर्जी के मुताबिक चलना ही आजादी है। मिसाल दे देता हूँ, एक घर घर की मिसाल है। मेरे घर में बच्चे मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं तो सारे मजे कर रहे हैं या नहीं? अब अगर वो ये कहें कि जी हम पे पाबंदी है, किस चीज की पाबंदी है, कि भी लड़ना नहीं, किस चीज की पाबंदी है, घर में किलकिल नहीं करनी, किस चीज की पाबंदी है कि हाथ नहीं उठाना, किस चीज की पाबंदी है कि ऊंचा मत बोलो, हालांकि सबसे ज्यादा ऊंचा मैं खुद बोलता हूं मैंने अपनी आवाज इस वजह से ऊंची रखी ताकि इनकी आवाज धीमी रहे। मैंने उनको साफ बता दिया कि बेटे अगर तुम धीमे बोलोगे मैं धीमा बोलूंगा, जहां तुम ऊंचा बोलोगे मुझसे ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकते क्योंकि मैं बाप हूं तो अल्लाह तो अल्लाह है भाई, हम क्यों ऊंचा बोले? अगर हम ऊंचा बोलेंगे तो फिर अल्लाह चिंघाड़ेगा फिर वो गजा की पट्टी बन जाएगी। बात वाजे हो गई।